ನಾಮ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾಸ್ಮ ಹರೇಭಿ ರಕ್ಷಿತ. इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है. श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक क्रमांक 24. ವಂದೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಾಂ ಸಹಗಣಾರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ್ಯಂ ತದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ದೀನತಾರಣಂ. ನಮಃ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಭ್ರಷ್ಟಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೇ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪಾತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧೂಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯಾದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. जैसे कि पहले पिछले प्रवचन में हमने देखा था इस श्लोक में केवल कुंती देवी के ऊपर आए गए एक के बाद एक महान संकट उन सब का वर्णन दिया हुआ है. पिछली बार हमने कैसे उनको विष पिलाया गया, भीमसेन को विषाक्त अन्न दिया गया, वारणावत के महल में उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, पुरुष आद पुरुष मतलब नर नरभक्षी वो हिडिंब उसके साथ भीमसेन की मुठभेड़ हो गई. असत सभाया इस संकट के पहले हमने हमारा वर्णन खंडित किया था. सत शब्द जैसे ओम तत् सत्, ओम तत्सत, ये तीन शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्योतक हैं, उनको आह्वान करते हैं। अगर हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का जो पहला प्रीफेस, उसके बाद श्रील प्रभुपाद हमेशा ओम तत्सत। तो कोई भी प्रयत्न, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कोशिश, ओम तत्सत बोलने से हम भगवान को ये इस भावना से उसको अर्पण करते हैं। अगर आपकी सेवा में इसका कोई महत्व हो तो कृपया इसको आप स्वीकार कीजिए। सत शब्द के कई अर्थ हैं, उसमें से एक है अच्छा, और एक जिसे उसके हायर हायर लेवल्स के ऊंचे ऊंचे श्रेणी के अर्थ को देखते जाएंगे। एक सत का अर्थ होता है सच्चिद आनंद वाला सत, वो सत होता है इटर्नल, जो चीज कभी नष्ट नहीं होने वाली। तो इस जगत को असत कहा गया है, यहां पर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, यहां तक कोई भी पहचान, इवन आइडेंटिफिकेशन हमारा चेंज होते रहता है। वैष्णवों को सत कहा गया है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, कि सत मतलब भगवान के वैष्णव भक्त। भगवान को सताम पति कहा गया है कि भगवान ऐसे वैष्णवों का बहुत प्रेम से ख्याल रखते हैं, उनके स्वामी हैं। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी श्लोकों में ये सत आता रहेगा। यहां पर असत सभाया, कौन सी सभा थी वो? कौरवों की। कौरवों की सभा में पांडवों को अब जैसे ये बात है, द्रौपदी का विवाह हो गया पांडवों के साथ, सारी जनता हर्षोल्लासित हो गई कि अरे पांचों भाई जीवित हैं। इतना ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं और पांच भाई एक साथ एक पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो उसी समय व्यासदेव वहां पर पहुंचे और उन्होंने, व्यासदेव ने समझाया, पांडव इतने सतशील, इतने चरित्रवान थे कि अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर में उसको जीतकर भी सबसे पहले, और उनकी माता ने जो आशीर्वाद दिया, माता वो इस प्रकार से बोले अपनी माता से कि माताश्री आज हम क्या भिक्षा लाए हैं देखो, और कुंती देवी अंदर बैठी थी और वो सहसा बोल गई जो भी लाए हो पांचों भाई बांट कर लेना, अभी भोजन है तो बांट सकते हैं, संपत्ति है तो बांट सकते हैं, ये पत्नी लाए उसको कैसे बांटे? बांटना मतलब क्या, पांच पतियों की एक पत्नी होगी? एक पति पांच पत्नियों को स्वीकार कर सकता था उस संस्कृति के अनुसार? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये इससे बहुत संकट होगा, लोगों के मन में संदेह होगा, और हमारी आपस की जो यूनिटी है, एकता है, वो भी नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमको पहले किसी वरिष्ठ अथॉरिटी से पूछना है, और उसी समय व्यासदेव वहां पर उपस्थित हो गए। व्यासदेव ने सारी घटना का आकलन किया और उन्होंने समझाया कि नहीं। तो उन्होंने पूछा, पहले कभी ऐसे हुआ है क्या? आप शायद हमको प्रेम करते हुए कहेंगे कि नहीं नहीं आपके लिए ठीक है, कोई जानता है पहले ऐसे कभी हुआ था? नहीं। प्रचेता जो थे 11 पुत्र, उन्होंने मारीशा नाम की एक जो सोमदेव और वनराज की जो कन्या थी उसका स्वीकार किया था, तो वो भी इसको कहते हैं अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, एकदम अलग परिस्थिति है। कहने की बात ऐसी है कि वैदिक फॉर्मूले जो हैं, वैदिक रिचुअल जो हैं, वैदिक विधि विधान जो हैं, ये कोई ऐसा सेट रूल्स नहीं है उसमें, क्योंकि भौतिक परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है और कोई चीज अच्छी है कोई चीज बुरी है कौन समझेगा उसको, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं अच्छा है। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, अपनी घर गृहस्थी में, पढ़ाई लिखाई में, जैसे धन कमाना, धन का व्यय करना, कोई ऑक्यूपेशनल ड्यूटी चूज करना, कोई करियर चूज करना, उसमें मैं जो कर रहा हूं ये धर्म के साथ है या धर्म के विरुद्ध है कौन बताएगा। तो कहने की बात है कि उसके बाद दुर्योधन तो मन में मन जली रहा था कि ये कैसे, मैं देख रहा हूं इनको मारने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये तो बिल्कुल मरते नहीं, बिल्कुल उनका तो उत्कर्ष होते जा रहा है। तो उसने अपने पिता से कहा कि देखो अभी एक बात आपको माननी पड़ेगी मेरी, युधिष्ठिर महाराज को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाओ। अभी द्यूत क्रीड़ा ये एक्चुअली गैम्बलिंग जैसे ही उसका नाम है, लेकिन उसमें और भी कुछ था। पहले राजा लोग एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाने के लिए करते थे, ये केवल आजकल जैसे कोई पेपर में पढ़ लिया और एक जगह पे 10-5 रुपए लगा दिए और मतलब इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये पूरा ऐसा एक तमोगुणी टाइप एक्टिविटी नहीं है वो, हालांकि इतना एग्जॉल्टेड एक्टिविटी भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि राजा है तो वो अपने मन से कुछ भी करेगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं ऐसे करेंगे तो फिर अभी छोड़ दे उनको, क्या प्रॉब्लम है आपका, आपके पास तो आपका राज्य है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो अगर आएंगे तो अभी अपना राज्य तो छीन लेंगी। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो इनके लिए कोई जगह दे दो एक, तो खांडव प्रस्थ नाम की एक जगह दी थी, पूरा रेगिस्तान ऐसा एरिया जहां पर कोई फूल वूल नहीं है, कुछ नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। अभी उन्हें क्या मालूम कि भगवान कृष्ण किसको बुलाएंगे वो सब डेकोरेशन के लिए और महल बनाने के लिए। स्वयं मय दानव, मयासुर नाम का जो है, वो तो इतना स्किल्ड हो, तो उसके पास इतने एक एक औजार हैं और कलाएं हैं कि उसने बोलो रातों रात जैसे उन्होंने एक ऐसा महल खड़ा कर दिया, वन उपवन सरोवर बगीचे उद्यान सब कुछ आ गया उसमें। और ये भी नहीं, उन्होंने सबको इनवाइट किया कि इसकी वास्तु शांति है या कुछ भोजन है, आप सब आइए। तो कई लोग देखने आए कि देखते हैं ये लोग सब गरीब लोग हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और जैसे ही वो उसमें नगरी में उन्होंने प्रवेश किया, बोले ये सब क्या है। और एक स्पेशल अट्रैक्शन खास करके रखा था दुर्योधन और उसकी पार्टी के लिए। वो जब आए तब उनको खास एक दालन से बुलाया गया अंदर अंदर अंदर, तो उनको कहा लगा कि अभी खत्म होगा, अभी तो अंतपुर आ जाएगा, अंतपुर आ जाएगा तो आता ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। पहले एक बड़ा हॉल, जैसे इतनी ऊंची लेवल से सब लोग चल रहे हैं और एकदम नीचे ऐसा एक डिप्रेशन जैसा है और तरल दिख रहा है ऐसे जैसे स्विमिंग पूल है। तो दुर्योधन ने सोचा इधर घर के अंदर थोड़ी कोई ऐसे पानी रखता है। उसने अपना पीताम्बर ऊपर उठाया और आगे कदम रखा तो पता चला उधर पानी था ही नहीं, वो केवल एक एक प्रकार के पिलर्स जिस प्रकार से अरेंज किए गए थे तो सूर्य के प्रकाश को अंदर परिवर्तित करके ऐसे लग रहा था जैसे पानी है। तो सब लोग हा 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 करके हंसने लगे, बोले यहां कोई पानी नहीं है महाराज, चलिए चलिए आगे चलिए। तो एक वो इंसल्ट हो गया। दूसरी बार ऐसा दिखा रहा था कि लेफ्ट में एक द्वार है और राइट में दीवार है, तो जो द्वार था वहां पर दुर्योधन चला गया तो ठोक करके लग गया उसकी नाक को, क्योंकि वो दीवार थी वो, और जो द्वार दिख रहा था वो वॉल थी एक, और जो दीवार दिख रही थी वहां से जाने के लिए रास्ता था। तो सब लोग फिर हंसने लगे उसको देखकर। और जब ये जब हो गया तब उसको पता चला कि मैं अभी मेन दरबार हॉल में आया हूं, सब रानियां वहां पर उपस्थित हैं, और दुर्योधन अपना सारे ट्विंकल ट्विंकल स्टार दिख रहे हैं उसको, तो अपने आप को संभाल रहा है और सब लोग हंस रहे हैं। ऐसे बोला था कि द्रौपदी भी हंस रही थी ये सब देखकर। अब आप सोचिए, पहले से कोई आदमी इतना ईर्ष्यालु है, पहले से है ही, और ऐसे एक के बाद एक अपमानजनक अनुभव आने के बाद उसने तो उसी समय मन ही मन तय कर लिया कि अभी इनफ, बहुत हो गया, अभी इनको कुछ, इनका कुछ समाज कुछ करना चाहिए इनके पास, इनके साथ। तो ये देखकर, एक तो उनका वैभव देखकर, फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि उनको अभी किसी भी हालत में बुलाओ उनको। द्राक्ष ने पूछा, लेकिन ये केवल दूत क्रीड़ा से क्या होगा, आपको क्या लगता है आप उसको हराओगे? बोला, उसकी चिंता आप मत करना। बोला, क्या कोई प्लान है क्या? बोला, हाँ, हमारे मामा शकुनी हैं, वो द्यूत खेलेंगे, मैं केवल सामने रहूंगा, लेकिन जो वो पासे हैं वो डालेंगे वो। वो बोले, अरे वो तो अलाउड नहीं है, ऐसे जो आदमी खेलेगा उसको करना चाहिए। बोले, वो मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करना। तो इन्विटेशन गया और युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, ठीक है, फ्रेंडली गेम के लिए बुला रहे हैं, शायद इनके मन में इच्छा होगी कि अभी जो बीत गया बीत गया, आने वाले वर्ष तो हम प्रेम से रहेंगे। तो वहां पर जैसे वो द्यूत क्रीड़ा आरंभ हो गई, तो वैसे वैसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 10 लाख, 10 करोड़, फिर उसके बाद हाथी, घोड़े, अश्व, रथ, राज्य, एक समय तो सारा राज्य चला गया युधिष्ठिर का। तो सब बोले, बस बस बस, ये मजाक बहुत हो गया। सबको सोचा ये मजाक ही है, किसी का राज्य ऐसे छीन लेना ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, अगर राज्य लेना है तो युद्ध करो। तो लेकिन ये तो क्या उस समय उन सबके सर पर सवार हो गया था पता नहीं। तो उन्होंने कहा, चलो अभी बहुत हो गया। बोला, नहीं नहीं नहीं, आपके पास आपके 5 भाई है ना, अभी अपने भाई को तो कोई दांव पे लगाता नहीं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कह गए, ठीक है, मैं अपने भाइयों को दांव पे लगाता हूं। तो अपने भाई हार गए। बोले, अभी आप तो हो स्वयं, तो स्वयं हार गए। बोले, आपकी पत्नी तो है अभी, तो पत्नी को भी हार गए। उस समय कर्ण, जो अब तक इतना चुप बैठा था, वो कहने लगा, अरे बुला उसको। बोले, नहीं नहीं नहीं, अभी भीष्म, द्रोण, कृपा, बाकी सब देख रहे थे, उनको लगा कि ये ठीक है, आपस में कुछ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब दुशासन ने वास्तविक एक सेवक को भेजा और बोला उसको लेके आओ, तो पता चला कि वो तो रजस्वला है, वो नहीं आ सकती इस अवस्था में, एक वस्त्र पहन के रह रही है। बोला, अरे क्या है, वो तो उसके पति ने तो उसको दांव पे लगा दिया है और वो हार गए उसमें, अभी क्या है उसका। और वैसे भी 5 पतियों वाली कोई स्त्री का कोई समाज में स्थान है? तो पांडव ये सब सुन रहे थे और पता कर सकते हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये सब अपमान सुनना वास्तविक जब वो द्रौपदी को लेके आए, पहले वो सेवक ने कहा कि आप हार गई है युद्ध क्रीड़ा में, तो उसने पूछा, मेरे पति से पूछो कि मुझे हारने से पहले वो अपने आप को हार चुके थे कि पहले मुझे दांव पे लगाया था। तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को पहले हार चुके थे। बोले फिर उनका मेरे ऊपर अधिकार क्या था जब वो अपने आप को पूरे हार चुके थे। तो बाद में दुशासन स्वयं द्रौपदी को उनकी केश पकड़कर घसीटता हुआ लेके आया और कर्ण ने कहा, ये तो इस स्त्री का कोई समाज में कोई ऊंचा स्थान नहीं हो सकता, इसको विवश कर दो। सबने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप। और तभी दुशासन वास्तविक जब उसने हाथ बढ़ाया आगे, तब द्रौपदी उसी समय पुकारने लगी। वैष्णव आचार्यों ने, अनेक आचार्यों ने इस घटना के ऊपर इतने सुंदर श्लोक रचे हैं। वास्तविक वो जो क्षण था वो किसी भी एक जीवन, किसी भी एक भक्त के जीवन में आ सकता है। जब जो चीज हमारे लिए सबसे पवित्र है, जो चीज हमारे लिए सबसे पुण्यवान है, महत्वपूर्ण है, और हमारी आंखों के सामने असुर शक्तियां उसको छीन ले रही है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी उस समय भीष्म को देखने लगी, द्रोण को देखने लगी। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही पहले से, लेकिन सुन तो सकता था ना कम से कम, भले अंधा है व्यक्ति लेकिन सुन तो रहा है वो। तो उस सभा को सबसे नाम ले रही है कृष्ण का, हे गोपाल, हे द्वारकावासिन, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। लेकिन मन में सोच रही है कि ये लोग सुनते क्यों नहीं। श्रीपाद सचिनंदन महाराज अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि हमारा नाम जब भी कभी ऐसे हो सकता है कि हम नाम ले रहे हैं भगवान का, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी नाम में तो पूर्ण शक्ति है, नाम में पूर्ण भगवान ने अपनी कृपा दी है, नाम में रक्षण करने की भी शक्ति है। लेकिन हो सकता है कि नियोफाइट अवस्था में हम भगवान का नाम लेके जिस किसी को हमने इस जगत में एक शक्तिमान के रूप में देखा है, जिस किसी को हमने पावरफुल, जिसको हमने प्रोटेक्शन के रूप में देखा है, हम शायद उसको सूचित कर रहे होंगे। और ये जब तक होता है तब तक भगवान वहां पर अवतीर्ण नहीं होते। तो बाद में सब कुछ खत्म हो गया, कोई और मदद नहीं कर रहा है, तो अपने अपने हाथों से पकड़ लिया, फिर उसके हाथ से भी वस्त्र छूट गया, फिर दांतों तले पकड़ लिया, दांत से भी छूट गया। अभी कोई नहीं बचा रहा वहां पर, बाहर के लोग नहीं और अपनी निज शक्ति भी नहीं। तब उसने सोचा कि अभी कोई करने वाला है ही नहीं मेरा रक्षण, तो क्यों मैं इनके ऊपर निर्भर रहूं। और फिर दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने आंखें बंद करके जोर से भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी समय वहां पर श्री कृष्ण प्रकट तो नहीं हुए सबके सामने, लेकिन दुशासन जैसे उसका वस्त्र खींचता रहा, अचानक उसको लगा कि इतनी क्यों शक्ति मुझे खर्च करनी पड़ रही है केवल एक वस्त्र उतारने में। और वस्त्र तो एक के बाद आते ही जा रहे आते ही जा रहे आते ही जा रहे, पूरा ऐसा एक हीप हो गया, एक राशि हो गई पूरे वस्त्रों की। और दुशासन का पूरा बल निकल गया। कर्ण, दुर्योधन, भीष्मदेव तो आंखें बंद करके कुछ देख ही नहीं रहे थे। द्रोण, कृपाचार्य अतीव लज्जा के कारण नीचे को देख रहे थे। और ऐसे इसमें द्रौपदी ने फिर आगे कथा महाभारत में बताई जाती है कि उन्होंने कहा ये सभा जिस किसी ने यहां पर इस बर्ताव का समर्थन किया है और जिस किसी ने इसको रचा है, जिस किसी की इसको अनुमति है, उन सबको मैं शाप देना चाहती हूं। तब धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि नहीं 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 शाप मत देना, बल्कि मेरे से कुछ वरदान मांगो। तो उसने कहा मेरे पतियों को मुक्त कर दो, मेरे पतियों को राज्य वापस प्राप्त कर दियो, राज्य की वापस प्राप्ति हो, पुनर्प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा और एक मांगो, बोले नहीं ये बस हो गया। आश्चर्य की बात है कि ये राज्य मिलने के बाद पुनः एक बार उनको रक्तयुद्ध करने के लिए बुलाया गया। अब हम सोच सकते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बार होने के बाद भी, और उसमें फिर हार गए, लेकिन इस दूसरी बार जब हारे तब कंडीशन ऐसे थी कि जो पक्ष हार गया उसके लिए केवल वनवास है और कोई अपमान की बात नहीं है। 12 वर्ष तक वनवास है और 13वां वर्ष अज्ञातवास है। अज्ञातवास में अगर विजयी पक्ष ने पराभूत पक्ष को ढूंढ निकाला तो पुनर् 12 वर्ष का वनवास है। वास्तविक देखा जाएगा तो महाभारत एक महाभारत में इतना रस क्यों आता है हमको, क्योंकि ये पूरा ये पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। सच कहे तो ये घटी हुई घटना है, ऐसा नहीं कि कोई कपोल कल्पित इतिहास है। और ये भौतिक जगत किस लेवल तक जा सकता है, यहाँ के हालात किस लेवल तक जा सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आजकल सबके चर्चा का विषय है जो इतना संकट आ गया, 10-12 लोग और कितने होंगे क्या मालूम, 1,40,00,000 बस्ती वाले शहर का पूरा नाक में दम कर सकते हैं। किस बल पर? केवल उनके कन्विक्शन, केवल उनकी मन की धारणा के ऊपर। हम कभी कभी सोच सकते हैं कि जो इनका विश्वास उनके अपने आइडियल्स, उनके अपने घृणास्पद उद्देश्यों में है, उतना अगर हमारा भगवत प्राप्ति के में मन लगा तो क्या नहीं हो सकता फिर। तो भक्त सोचते हैं अभी हमने तो वैष्णव होने का निश्चय लिया है, हम निश्चित नियमों का पालन करेंगे, नाम का जाप करेंगे, तो क्या भगवान हमको बचाएंगे? और भगवान अगर बचाएंगे भी तो इन सबको हम कैसे समझ सकते हैं, ये क्या है? एक क्लियर बात इसमें ऐसी है कि जिनको हमने हमारा रक्षणकर्ता समझा है या समझे हैं, जिनको हमने, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, बिजनेस के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि कितना स्वार्थ भरा है उनमें। और उनसे अगर हम कुछ लेंगे तो वो वही होगा ना, हम भी उसमें। जैसे अगर किसी ने कहा कि मेरे पास किसी का मर्डर किया हुआ 2,00,000 रुपया है, तो हम कहेंगे ठीक है मुझे लाओ, मैं उसको बिजनेस में यूज करता हूं और बाद में आपको वापस दे दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए वो पैसा कहां से आया हुआ है और उसको उसके पीछे कितना कर्म का प्रतिफल लगाया होगा। तो इन लोगों से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा रखना या इनसे कुछ रक्षण की भावना रखना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें भी बहुत सारी आश्चर्यकारक घटनाएं होंगी। जैसे एक पुलिस है, अभी भी उन्होंने 16 माला जाप करना शुरू किया है, संडे फिश में आते हैं और उनको उधरी ड्यूटी पे लगाया गया। तो बोले वो देख रहे थे कि जो हमको अस्त्र दिए थे टेररिस्ट लोगों का सामना करने के लिए, तो हम जब तक वो लोड करेंगे, वो खुंडा मारेंगे, फिर एक ठुश, फिर और एक बार एक, फिर ठुश, तब तक वो 20-25 गोलियां हमारी तरफ छोड़ते थे। और बोले मेरे कान के ऊपर से, सर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से केवल वो सुंग 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 सुंग। तो बोले मैं तो ऐसे जाप कर रहा था जैसा कभी मैंने जाप ही नहीं किया होगा। और पूरे 72 घंटे नींद नहीं मिली उसको। और फिर भी उस दिन संडे नाइट को, एक शनिवार रात को एक कीर्तन का कार्यक्रम रखा था, प्रोग्राम, बोला मैं आऊंगा उधर। बोले बाकी सब इतनी नजदीकी से मृत्यु को देखा है, ऐसे पूरी लाइन लगी थी, लाइन बनाई थी कॉर्डन पुलिसों का, वो उसके 1.5 फुट दूरी पर उसका दोस्त, और दोनों फायरिंग कर रहे हैं। और बोले एक बार इधर का व्यक्ति मर गया, एक बार इधर का व्यक्ति मर गया। तो बोले मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे जीवित, किसको पता है कौन जीवित रहेगा जब सारे आपके माहौल में केवल बुलेट्स बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी है जीवन के संकट का सामना करने की, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके ऊपर बहुत सोच विचार हो रहा है भक्तों के जीवन में कि वास्तविक भगवान जब रक्षण करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, भगवान किसकी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की, प्रॉपर्टी की, हमारे बुद्धि की, विवेक बुद्धि की, हमारी भावना की, किसकी। तो वास्तविक शास्त्र ये बताता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, जैसे आपकी स्थिति हो उसी प्रपोर्शन में आपको भगवान का ये प्रोटेक्शन, भगवान का संरक्षण समझ में आता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और कहीं पे आग लगी है, अभी वो छोटा बालक है, उसको अपनी माँ अगर उठा के लेके जाएगी कहीं से, क्या उसको पता है कि वहां पे आग लगी थी और मेरी माँ मुझे यहां से ले गई, उसे नहीं मालूम, वो तो केवल आश्रित है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों को हर समय हर क्षण ये सोचते हैं कि इनके लिए सबसे अच्छा क्या हो। एक दूसरा पॉइंट ऐसे आ गया कि अगर भौतिक जगत में हम हैं और भगवान का प्रोटेक्शन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अभी भगवान के फेवरेट है, हमको तो अभी कुछ भी करने के लिए यहां पर परमिशन है, या हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ना, ये बात नहीं है। भगवान का प्रोटेक्शन हमारे लिए, भगवान का संरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता कि हम इसका विनियोग और भौतिक प्रगति के लिए या और भौतिक तरक्की के लिए करें। मटीरियल प्रोग्रेस, भौतिक प्रगति तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार आती ही रहेगी। हम शास्त्र में पढ़ते हैं ना, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम नतेशाम पदम पदम यत विपदाम नतेशाम। इसमें वो बुद्धिमान व्यक्ति समाश्रिता, जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो इस स्थान का आश्रय नहीं ग्रहण करता। कौन सा स्थान है वो, जहां पर पदम पदम, पद का अर्थ होता है पोजीशन, पदवी कहते हैं हम, पदवी मतलब डिजिग्नेशन, डिग्री, तो पद का अर्थ है कोई पोजीशन। और विपद, जैसे विपदा शंतु, तो विपदा का अर्थ है संकट, लेकिन विपदा का अर्थ यहां पे ऐसा है कि जिस पद में आप हो वहां से आपको कोई निकाल देता है। कोई एक शिखर पर खड़ा है पर्वत के और एक तेजी से तूफान आ गया और वहां से नीचे गिर गया हो, तो वैसे ही ताज ओबेरॉय ये सब भोग के साधन है ना, इन स्थानों का, इन स्थानों की पहचान है कि वहां पर बहुत अच्छा रहना, ऊंचा खाना, वहां पर डिग्निटी, वहां पर भौतिक मान सम्मान गर्व। लेकिन थोड़ा सा कोई चीज भौतिक जगत में चेंज हो गया तो वही स्थान मृत्यु भय, जो वहां से बच गए हैं उनसे पूछिए कि ताज कहने से आपके मन में क्या ख्याल आता है, बोलेंगे बाप रे बाप कुछ मत याद दिलाना। तो ये पूरा संसार ऐसा ही है। एक बार 20-25 साल पहले कभी कश्मीर गया होगा तो कहेगा कश्मीर ऊटी माथेरान महाबलेश्वर, ये शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? बोले रे हम तो 3 साल गए थे वहां पर, पिकनिक हमारी अच्छी हुई थी, कितना सुहाना वातावरण था, कोहरा पड़ा था और इतना वॉकिंग किया हमने, फिर पेड़ पर चढ़े। तो वास्तविक उस स्थान का कोई महत्व नहीं है। उसी स्थान पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि वही नाम लेकर हम कहेंगे कि नहीं 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 वो स्मृतियां नहीं चाहिए। एक व्यक्ति मुझे कल बता रहे थे, नहीं वो बॉम्ब ब्लास्ट था ना वो ठीक था। मैंने कहा मतलब क्या है? नहीं मतलब क्या है, ट्रेन में एक बम लगा दिया और मर गए, तो जो उधर हैं अभी ट्रेन चल रही है तो क्या कर सकते हैं, अभी वहां से उधर तो नहीं सकते। लेकिन ये जो है कि रेलवे स्टेशन पर आ गए, घर में आ गए, ऑफिस में आ गए, अस्पताल में आ गए, पुलिस स्टेशन में आ गए, होटल में आ गए, अरे कल अपने पास भी आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो बात है। तो यहां तक कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े करोड़पति, वो सब लोग एक रिवॉल्वर लेकर अपने तकिए के पीछे रख के सोए थे। अब ये भी कोई बात है जिनको, हाँ किसी को अपने बाहू के बल पे वो विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास होगा कि अरे मेरे घर में कौन आ सकता है, या मैं इतना महत्वपूर्ण हूं मुझे कौन मारेगा। एक छोटी सी घटना ने सारा विश्वास तोड़ दिया। क्या तोड़ा? बिल्डिंग या कोई घर दीवार नहीं तोड़ी ये बम ने, ये जो विश्वास है। पहले से लोग कहते हैं कि ये संसार समय बड़ा खराब है, घर से बाहर निकलो, घर पहुंचे तो समझना आ गए। लेकिन ये घटना से वास्तविक उसकी प्रचिति होने लगी लोगों को। अर्थात भौतिक जगत की दूसरा पहलू वो है, यहां पर विस्मृति भी तुरंत आ जाती है। संडे को शाम को जब हम मंदिर में सोने लगे 9:15 बजे, तो सामने बाबूलनाथ के यहां पर कोई ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और सारे फिल्म के गाने लगाए थे, कोई गा रहे हैं कोई नाच रहे हैं। तो हमने कहा ये शहर की एक पहचान कहो, खासियत कहो, कुछ भी कहो, कि लोग सोचते कि ठीक है अरे जो हो गया हो गया, इनको मरना था मर गया, अभी अभी हमने इसको तो बुकिंग किया है, इतना पैसा लगाया है, तो चलो अभी हो जाने तो क्या है प्रॉब्लम अभी। तो ये रहा भौतिक जगत का माहौल। कुछ समय के लिए लोग एकदम फिलोसॉफिकल हो जाएंगे, अरे बापरे क्या है, क्या प्रभु जी आपका शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, है कहां था आपका कृष्ण ये सब हो रहा था अभी, या भगवान अवतार क्यों नहीं लेते इतना संकट हो रहा है तो। और सबसे महत्वपूर्ण और पेचीदा सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धर्म आ गया है इसमें। अगर ये दो गुंडे लोगों के बीच में फाइटिंग होती थी, दो बड़े गुंडे हैं और वो आपस में कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अरे सबको खत्म कर दो या तो पैसा दे दो इनको, चुप रहो। दो पॉलिटिकल लीडर झगड़ा कर रहे हैं ऐसे, तो भी कुछ और है। लेकिन जो इसमें धर्म आ जाता है, तो कलयुग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसी को धर्म समझ में नहीं आता। चैतन्य चरितामृत में एक सिंपल से सिंपल घटना से महाप्रभु ने ये सबक सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन मथुरा नगरी के पहले, मथुरा नगरी प्रवेश करते समय देखकर एक वहां पे सांवरिया सांवरिया जाति के ब्राह्मण थे, महाप्रभु का आवेश देकर उनके मन में भी ऐसे ही भाव आने लगे। महाप्रभु ने झट से उनको पहचान कर पूछा, आप कौन है? बोले, मैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का कृपा प्राप्त एक सेवक हूं। महाप्रभु को मन में बहुत संतोष हो गया। उन्होंने देखा कि ऐसा जो प्रेमाविष्ट भाव है उसका कोई तो कोई कनेक्शन माधवेंद्रपुरी से होना ही चाहिए। उनका भी तो था, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, मैं आपके घर में भिक्षा ले सकता हूं? तो उन्होंने कहा, लेकिन हमारी जाति थोड़ी निम्न है, छोटे श्रेणी के हैं हम, आप हमारे पास आएंगे? और उन्होंने ऐड किया, महेंद्रपुरी जब यहां आए थे तब उन्होंने हमारे घर आकर भोजन लिया था। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो हम सबके लिए गाइडेंस, और श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य भी देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी जैसे आचार्यों का जो व्यवहार रहा है वही एकमात्र कलयुग के लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह समझने का साधन आचार्यों का व्यवहार। आप केवल शास्त्र के श्लोक पढ़े जाएंगे, आपके एक श्लोक के लिए किसी के पास 10 श्लोक होंगे। आप कहेंगे पद्म पुराण में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा भविष्य पुराण में ऐसे लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में ऐसे लिखा है, तो स्कंद पुराण में ऐसे लिखा है। कोई कहेगा ये आपका स्कंद पुराण भी ठीक नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो स्कंद पुराण मिलता है उसमें और कुछ है। सही बात है ना? तो कई बार लोग समझते हैं, अगर धर्म के मामले में इतना सारा विवाद है तो आप और हम कैसे जान सकते हैं कि ये 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, ये सही धर्म हुआ कि नहीं? राधा गोपीनाथ प्रभु को लोग पूछते थे, ये 16 माला कहां लिखी है भगवद गीता में कि अर्जुन 16 माला जपेत, ऐसा कभी श्लोक है? कोई ऐसा कोई श्लोक तो है नहीं। अर्थात इसका उत्तर क्या है? भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, 24 घंटा नाम जप करो। वो करने की तैयारी है अगर दिया हुआ है तो? वो तो है नहीं ना। तो ये आपके लिए कल 2 घंटे की बात की गई है, शास्त्र कहता है 24 घंटे करो। सततम कीर्तयन्तो माम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये भी कहा गया है। खैर, तो आचार्य अपने व्यवहार से क्या उचित क्या अनुचित, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद के जीवन में कई घटनाएं ऐसी थी। एक बार उन्होंने देखा कि कोई शिष्य, उस समय भारत की एक प्रधानमंत्री थी, वो एक स्त्री थी। प्रभुपाद ने कहा, लानत है इस देश पर कि एक महाभारत रामायण जहां पर घटा है ऐसे देश के ऊपर आज एक स्त्री राज्य कर रही है, शर्म की बात है। और जिस स्त्री का कोई पति नहीं है और जिसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो तो एकदम एक ऐसी वैसी स्त्री है। तो एक शिष्य उसी को प्रवचन में दोहराने लगे, भारत में प्रवचन करते करते प्रभुपाद ने कहा, डोंट इमिटेट मी, मैंने अगर कुछ बोला होगा तो ये नहीं कि आपको लाइसेंस है उसी को बोलने का। और एक बार जब श्रील प्रभुपाद से पूछा, आपके पश्चात ये जो आपका मूवमेंट है इसको हम कैसे संभालेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, प्रभुपाद जी का वाक्य था, डू एज आई डिड, जैसे मैंने किया वैसे करो और क्या। तो ये भी समझने के लिए थोड़ी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है कि कौन सी चीजें जो प्रभुपाद ने की है वो हमको वैसे के वैसे करनी है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्लेन में थे और कहने लगे, थोड़ा बदहजमी लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके सर्वेंट ने कहा कि सोडा लेते हैं, देखते हैं सोडा से अगर गैस रिलीज हो गया तो पेट भी हल्का हो जाएगा। तो सेवन अप नाम का कोई सोडा मिला उनको, जिसमें थोड़ा शक्कर भी डाला था। प्रभु ने कहा ये अच्छा है स्वाद में। दूसरे दिन सारे इस्कॉन में बात फैल गई कि सेवन अप बोनाफाइड हो गया अभी। एक या दो बार प्रभुपाद जी ने उसको अपने भोजन के साथ रिक्वेस्ट किया होगा कि कुछ सेवन अप है तो लाइए, ऐसा भी नहीं कि उसके बाद बार बार पूछते रहे वो। तो हमारी भी ये धारणा हो सकती है कि चलो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया उसका तो हम अनुकरण नहीं कर सकते, कम से कम उनका जैसे सेवन अप तो पी सकते हैं ना, ये बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात, जब भी मन में धर्म के बारे में कोई प्रश्न हो, मैं ये कर रहा हूं धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है, मेरा अपना करियर, मेरा अपना बिजनेस, मेरा अपना रिलीजन, मेरा अपना कोई भी व्यवहार, उसमें आचार्यों ने क्या इसके मापदंड दिए, उनके पैरामीटर्स क्या है उसमें, क्योंकि ये सब बदलता रहेगा। एक भक्त ने लंदन का जो ये था मेटल एक्सचेंज, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे मेटल धातु लोहा कॉपर सोना चांदी इसके ऊपर भी ट्रेडिंग होता है, तो उसने कहा क्या हम भगवान कृष्ण का पैसा वहां लगा सकते हैं? कोई एक भक्त है जिनको कुछ अच्छी आइडिया है, उससे बहुत पैसा मिलेगा, फिर हम मंदिर बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले मुझे पता नहीं है क्या है ये। जब उनको पता चला कि ये थोड़ा सा रिस्की है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब मत करो। तो कई चीजें ऐसी थी जो प्रभुपाद जी को, जो इस जगत में हो रही है, भौतिक जगत में जितना कुछ हो रहा है ये जानना कोई विज्ञान की बात नहीं है। ये जिसको पूरा भौतिक जगत समझ में आ गया है वो कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। जैसे कई बार स्पिरिचुअली माइंडेड लोग समझते हैं ये सट्टा क्या होता है या ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो समझते अरे तो बेचारा बहुत ही निष्पाप है, तो कुछ जगत के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वास्तविक भौतिक जगत के बारे में अत्यधिक जानकारी होना यह बड़ा पाप है। हाँ, ये भौतिक जगत वास्तविक कैसे चलता है इसके बारे में जानकारी लेना यह वास्तविक एक बहुत खतरनाक अवस्था है, क्योंकि ये वास्तविक कैसे चलता है किसी को पता नहीं है। रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण ने जब उनके साथ कुछ हंसी मजाक किया था, प्रणय कलह, उनको रोष उत्पन्न करने वाले कुछ स्टेटमेंट्स कहे थे, तो भगवान ने कहा था कि रुक्मिणी देवी ये भौतिक राजाओं के डर से मैं छुपकर यहां द्वारका में रह रहा हूं, तो उसका सुंदर अर्थ लगा दिया रुक्मिणी देवी, सच कहा आपने, कौन से राजा हैं जो आपके विपक्ष में है? बोले वास्तविक भौतिक जगत के बुद्धू जीवों को मालूम ही नहीं कि उनके वास्तविक राजा कौन है। उनके राजा हैं ये तीन गुण, और सब के सब लोग इन तीन गुणों के गुलामों के रूप में काम करते हैं। गुलाम का मतलब क्या हो गया, ए उठो ये काम करो यहां बैठो, वो करेगा वो। तो तीन गुण यहां के राजा हैं और सारे जीव यहां उनके गुलाम हैं। अब आप देखेंगे कई मैगजीन कई न्यूज़पेपर्स में निश्चित ही इस प्रकार के कोई आर्टिकल आएंगे, गेटिंग इनसाइड द माइंड ऑफ ए टेररिस्ट, शायद आपने किसी ने पढ़ा भी होगा, हर हादसे के बाद आता है ऐसा कुछ कि इनके मन में हम प्रवेश करेंगे कि ये क्या सोच रहे थे। एक हॉस्टेज ने कहा कि एक व्यक्ति शूटिंग करते समय हंस रहा था जोर जोर से, उसको आनंद आ रहा था करने में, ये कैसे हो सकता है? गीता कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। आप यहां पे डॉक्टर्स हैं या कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इन्फेक्शन जैसे किसी को खुजली हो गई है केवल इस जगह पर है, खुजली को जितना निगलेक्ट करो और सब जगह पे उसको फैलाने दो, एक समय ऐसा आएगा जब सारा शरीर खून से ये हो जाएगा या पूरे शरीर के चमड़ी पर वही खुजलाहट हो जाएगी। कोई कैंसर है किसी के केवल कान में है, नाक में है, लंग्स में है, जब कैंसर से जर्जर पूरा शरीर हो जाएगा तो उसकी अवस्था कैसे दिखती है। तो वैसे ही रजो, खास करके रजो नहीं, तमोगुण के लगाव से जितना उसका इन्फेक्शन ज्यादा अधिक अधिक अधिक। तमोगुण में तो गीता बताती है निद्रा आलस्य प्रमाद, अति निद्रा आती है, अर्थात कभी कभी निद्रा का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति जागता भी रहता है, और प्रमाद हर चीज में गलती, अधर्म क्या है जानते नहीं, धर्म अधर्म हमने जा विपरीत क्या है, सच्चा सच क्या है जानते नहीं। तो दया करुणा ये जो फाइनर क्वालिटीज हैं, ये जो सूक्ष्म गुण है, जितना अधिक तमोगुण का विकास करो अपने मन में उतना वो दूर जाते हैं। तो जैसे कोई शेर किसी एक पशु को पकड़कर आराम से उसके हड्डी तोड़ रहा है, उसके गला फाड़ रहा है, उसका खून पी रहा है, तो हम कह रहे हैं अरे अरे करते समय चेहरे पे कुछ दिखाओ कम से कम कि आपको शर्म आ रही है। बोले शर्म किस बात की, इसमें जीरो। और मनुष्य उसका माइंड ज्यादा डेवलप्ड है, वो जान रहा है वो क्या कर रहा है, वो जानता है। शेर कम से कम जानता नहीं कि वो उस पशु को कितना पेन दे रहा है, कितनी वेदना दे रहा है, वो नहीं जानता, वो उसका शरीर तो पशुवत है। लेकिन मनुष्य जान सकता है मैं अब इसको मार रहा हूं तो उसको कितनी वेदना हो रही है, मैं जान सकता हूं। और ये जो तमोगुणी आनंद है, श्री प्रभुपाद ने कहा रजोगुणी आनंद है भौतिक जगत में कुछ उत्पन्न करने का, सत्वगुणी आनंद है भौतिक जगत में किसी चीज को स्थिति को बनाए रखने का, और तमोगुणी आनंद है किसी की किसी भी चीज को नष्ट करने का। तो जितना अधिक ये तमोगुण कोई इन्फेक्ट कर लेगा अपने आप को, ये केवल इन्फेक्शन की बात है। जैसे जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो TB इन्फेक्टेड पेशेंट है, आप कहेंगे अरे कम खांसी करो, बोले वो मेरे हाथ में नहीं है अभी, वो उसको क्या चाहिए, उसके ऊपर दवा चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। तो कोई भी, इतना तो हम जान सकते हैं, कोई भी इस समस्या का कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या का कोई रिलीजियस सॉल्यूशन नहीं है, जिसको जिस रिलीजन को जिस प्रकार से लोग रिलीजन बोल रहे हैं, इसके लिए कॉन्शियसनेस का ही सॉल्यूशन है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। और वो इस जगत में देना श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके फॉलोअर्स का कर्तव्य है वो। तो जितनी मात्रा में हो सके, जैसे अभी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण का समय है, एक छोटा सा ग्रंथ अगर आपने किसी अजनबी व्यक्ति या किसी के हाथ में दिया, प्रभुपाद ने कहा था कि एक लाइन कोई पढ़ेगा, वन लाइन, वो उसके जीवन में जाकर उसका वो प्रवेश हो जाएगा अंदर, क्योंकि ये जो वाणी है ये विशुद्ध सत्व है। हमें समझ में नहीं आएगा, जैसे आप डॉक्टर हैं आप जानते हैं इन्फेक्शन कैसे बढ़ता है, समझ में दिखता नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंस उसके सिम्टम्स से हम पता चलता है। तो जब समाज में इतना भारी तमोगुण का प्रभाव दिख रहा है तो एक सॉलिड शुद्ध सत्व का तो एक वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। हमको लग रहा था कि दादर में हम स्टॉल लगाएंगे तो लोग पूछेंगे अरे सब हो रहा है और आप लोग क्या गीता बांट रहे हैं यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग प्रेम से लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कभी कभी ये जो मैं जैसे मैंने कहा ज्यादा समय नहीं टिकेगा ये, लेकिन जितना समय टिका उतना कम से कम लोग थोड़े फिलोसॉफिकल माइंडेड हो जाते हैं कि क्या है जीवन, कभी भी मृत्यु हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ज्ञान, भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण का प्रसाद, तीनों एक साथ, या इसमें से दो या इसमें से कम एक अगर अवेलेबल हो, तो ये जितना हम इस समाज में इस भौतिक जगत में जगह जगह पर, जैसे वो क्या किया था उन्होंने, हर जगह पर कई ग्रेनेड्स प्लांट करके रखे थे, और समय आने के बाद वो फूटते थे, वो टाइम बॉम्ब जैसे। प्रभुपाद ने कहा मेरे ग्रंथ भी वैसे ही है, टाइम बॉम्ब है ये, एक टाइम पर फूटेगा, ये नाश करेगा किसका, तो तमोगुण का। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को वो सतोगुण में आकर क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तब तक उसके हाथ उस कृति से परावृत्त नहीं हो सकते। चाहे उसको कितना भी उपदेश दो, कितना भी साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो। श्लोक का आगे की जो संकट है उसके बारे में हम अगले बुधवार को चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवत महापुराण की। किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।